हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री रुद्र महिमा और मैं हूँ रोहित से। इस बार बात होने वाली है छोटा सा टॉपिक है, आज का छोटा सा विषय है हमारे शास्त्रों के बारे में, जो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। हमारे चार वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। फिर उनके चारों वेद भी हैं, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद और सामवेद। फिर इन्हीं के जुड़े हुए 108 उपनिषद आते हैं, फिर 18 महापुराण, फिर उप पुराण और उत्तर पुराण। हमारा जैसा कि पुराने इतिहास से इसमें दुर्भाग्यवश कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने भारत पर कई बार हमले किए। उसमें हमारा जो महान तक्षशिला जैसे और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे जिन्होंने हमारे वैदिक परंपरा को बनाए रखा था, उसमें कुछ सारे ऐसे उत्तर पुराण भी थे जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे, यानी जैसे थे जिस तरह से पहले चले आ रहे थे वैसे ही संभाल के रखा हुआ था। और आप सभी जानते हैं दुर्भाग्यवश उस जलाय गया जो 6 महीने तक लगातार वो चलता ही रहा। महान पुस्तकालय आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा, तो 6 महीने तक उसमें आग की लपटें उठती रही, वो चलता रहा। लेकिन भागवत कृपा से जो हमारे महान ग्रंथ थे वो हमें भी हैं और अभी बने तक है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये भगवत कृपा थी कि आज भी गीता प्रेस जैसे महान प्रकाशन सामने आए और उनके सहयोग से, गीता प्रेस के सहयोग से जन जन तक भारतीय इतिहास और उनकी परंपराएं पहुंचती रही। तो हमारे जो 18 महापुराण हैं वो बिल्कुल विशुद्ध हैं, जैसे कि कल्पतरु। शायद आप में से कुछ लोगों ने कल्पतरु के बारे में सुना होगा, एक ऐसा संग्रह है जिसमें काफ़ी सारे हमारे वैदिक साहित्य और शास्त्र मौजूद हैं। तो हमने बता दिया था कि 108 उपनिषद और 18 महापुराण, तो कुछ उत्तर पुराण हैं जिसके कुछ अभी नहीं मिल पाए हैं और कुछ उप पुराण में भी हैं जो पुराण अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यानी कि 18 महापुराण तो हमें मिल चुके हैं, 18 महापुराण तो हर किसी के पास था, तो इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म में कुछ मतलब कि कम मात्रा में उसमें उपस्थित थे, तो कुछ तो विध्वंस हो गए और कुछ जो है मौजूद है तो सिर्फ संस्कृत में, हिंदी में नहीं है, तो इसलिए काफ़ी लोगों के पास तो पहुँच नहीं पाते। और साथ ही साथ ऐसे पुराण भी है जैसे कि 18 महापुराण वो तो मिल चुके हैं और उप पुराण वो भी हमारे पास हैं, लेकिन जो उत्तर पुराण यानी कि जो ऋषि मुनियों ने लिखा था, क्योंकि उप पुराण जो महापुराण है ये आदि अनंत है, जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी तो इसका ज्ञान ब्रह्मा को ही दिया गया था। आप में से किसी ने अगर पुराण पढ़ा होगा तो इस पुराणों का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। ये पुराण ये ऐसा नहीं है कि इसे लिखा हुआ है, इसका ज्ञान खुद महेश्वर ने, खुद महादेव ने दिया था। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये महाशिव पुराण के पूर्व भाग के वायव्य संहिता में लिखी हुई है, जो पूर्व और उत्तर भाग, पूर्व और उत्तरखंड है वायव्य संहिता का शिव पुराण के अंदर, तो उसमें आपको ये चीज़ विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि अनंत और अनादि है। जब पृथ्वी का भी आरंभ नहीं हुआ था तो महेश्वर ने खुद पुराणों का उपदेश दिया था। फिर जब कृष्ण द्वापरायण का जन्म हुआ पराशर मुनि के द्वारा, तब उन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों का व्यास यानी कि विस्तार किया, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वापरायण व्यास हुआ। और फिर उन्हें कृष्ण द्वापरायण व्यास ने जो 1 अरब श्लोक या फिर 1 करोड़ श्लोकों की संख्या वाला हमारा पुराण था उससे संक्षिप्त किया और 1 लाख कर दिया। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे चीज़, क्योंकि ये जोड़ी इसलिए भी था क्योंकि आने वाले टाइम में कलयुग में लोगों की बुद्धि कम थी। अब जो हमारे मतलब शास्त्र 5 लाख उसमें श्लोक हैं, बताओ इतना मतलब कि संक्षिप्त करने के बाद भी लोग 5 लाख के श्लोक नहीं पढ़ पाते, वो भी छोड़ो जो गीता है सभी शास्त्रों का सार है उसे भी नहीं पढ़ पा रहे। तो इसीलिए इसका संक्षिप्तीकरण जरूरी था ताकि लोगों को जन जन में घर में ज्ञान पहुंचे और वो इसे पढ़ पाए। तो इसी तरह से हमारे जो 18 महापुराण हैं उसमें शुरुआत से लेके अंत तक मैं आज बताने हैं। जैसे कि ब्रह्मा पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, भगवत पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म विजाता लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, चरुण पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और 18वां पुराण जो है वो ब्रह्मांड पुराण है। तो ये 18 पुराण है और साथ ही साथ अध्यात्म रामायण, और ये पुराणों में ही है। इस साथ ही साथ आदि काव्य जो है रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ वो है तुलसीदास जी का तुलसी रामचरितमानस है। और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा कृष्ण महालीला, ये भी है हमारे शास्त्र में। और नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, साथ ही साथ निर्णय सिंधु है। निर्णय सिंधु का नाम जो मतलब अगर आप में से कोई ऐसे लोग हों ने शायद पंडित हो या फिर जिज्ञासा वाले लोग हो तो निर्णय सिंधु और धर्म सिंह इन सबके नाम सुना होगा। फिर इसके बाद आता है मुंड माला तंत्र, रुद्रदयामल तंत्र, गौरी तंत्र। ये तो मैंने मतलब बहुत ही कम चीज़ों का नाम लिया क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो अनंत है, अनादि है। लेकिन जो सबसे मतलब कि अनादि है, हमेशा से रहा है, वो मैं क्या बता सकता हूँ शास्त्र के बारे में। इतना विस्तृत है, इतनी सारी चीज़ें बड़ी बड़ी संपूर्ण है। अगर आपको तो किसी भी सवाल जवाब चाहिए, अगर आपको मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानना है, कौन सा ग्रह कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कितनी स्पीड से घूमता है, ये भी हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। ब्रह्मांड पुराण आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको आग के बारे में जानना है, आग किस तरह से काम करती है, कितनी होती है, सूर्य के प्लेनेट पर प्लेनेटरी सिस्टम क्या है, तो आप ये भी देख सकते हैं हमारे अग्नि पुराण में। क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें भरी पड़ी है। जो अगम निगम शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, तो तंत्र शास्त्र जब उत्पत्ति हुई थी तो पार्वती जी का सवाल था, फिर शिव जी कह रहे थे, तो इस तरह से मतलब कि शिव पार्वती संवाद में सारी चीज़ें बतलाई गई हैं। वैसे जो पुराण है इसमें सभी चारों वर्णों का, सभी आश्रमों का हक है कि इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो वेद है वो विशेषकर ब्राह्मणों के लिए है कि जो ब्राह्मण है उन्हें वेद मंत्रों के द्वारा और बाकी सभी को पुराण मंत्रों के द्वारा महेश्वर की, शिव की पूजा करनी चाहिए। इसका उपदेश हमारे कई सारे शास्त्रों ने दिया है। अब साथ ही साथ जो है आप सभी को मतलब किसी न किसी मतलब कि मैं मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के पास समय नहीं रहता पढ़ने का, लेकिन जो मतलब कि 18 अध्याय और 700 श्लोक वाला भगवद गीता है उसे तो आप पढ़ ही सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपने मनुष्य जीवन लेके मतलब अपने शास्त्रों की ओर नहीं बढ़े, अपने अध्यात्म को नहीं बढ़ाया, अपनी उन्नति नीति और भगवान के बारे में जानी, हमारे जो शास्त्र है हमारी माँ है, हमारी माँ ही बताती है, हमारे संस्कार देती है, तो हमें अपने शास्त्रों की ओर बढ़ना चाहिए, संस्कार लेना चाहिए और समझना चाहिए हमारे आध्यात्मिक धर्म के बारे में। काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। जो सबसे बड़ा पुराण है वो है स्कंद पुराण, 81,000 श्लोकों वाला है। और फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, और जो आप मतलब कि अगर आप जिसके भक्त हों, जैसे कि विष्णु जी के हरि वैष्णव पुराण पढ़िए, वैष्णव पुराण को अब विष्णु पुराण भी कहते हैं, और शैव पुराण, शिव पुराण पढ़िए, लिंग पुराण पढ़िए। जो शिव पुराण है और लिंग पुराण ये दोनों एक ही है, मतलब कि एक दूसरा पूरक है। जो शिव पुराण है और लिंग पुराण शिव पुराण का पूरक है, मतलब कि इसमें जो कहानियाँ चलती है, कथाएँ चलती है, वो आपको दोनों में मिल जाएगा। जैसे कि शिव पुराण में संक्षिप्त से बताया है, तो थोड़ा उसमें लिंग पुराण में उसके आगे क्या बताया कि हाँ इसके बाद क्या हुआ था। जैसे कि सर्व अवतार महादेव ने लिया था, हिरण नरसिंह की जब लड़ाई हुई थी सर्व अवतार से, तो फिर नरसिंह जी हार गए थे, उसके आगे की कहानी उसमें लिखी है लिंग पुराण में कि जो नरसिंह जी थे सर्व अवतार ने उन्हें पंजे से पकड़ लिया था और अंतरिक्ष में उड़ने लग गए थे। अंतरिक्ष में जाते समय उन्होंने मतलब नरसिंह जी ने बहुत मतलब कि प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया, फिर स्तुति की, तो स्तुति से प्रसन्न होते सर्व जी ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी खाल निकाल के शिव मतलब उड़ने लग गए तब से। और जब खाल उनकी ली थी तो उनका शरीर बिल्कुल गौर वन का हो गया था। तो काफ़ी सारी ऐसी मतलब कथाएं हैं। और प्रहलाद जी का मतलब कि कथा आती है, ये सभी ज़्यादातर पुराण में मिल जाएगी, लेकिन विस्तार से जो है विष्णु पुराण के मतलब प्रथम अंश में दी हुई है। विष्णु पुराण में जो है 6 अंश होते हैं और जो शिव पुराण है उसमें 7 संहिताएं हैं, विदेशो संहिता, रुद्र संहिता, चोटी रुद्र संहिता, सतरुद्री संहिता, वायवी संहिता, कैलाश संहिता, कुमार संहिता, इस तरह से उमा संहिता, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि लोग जो है 5 लाख श्लोकों वाले शास्त्रों को पढ़ पाए, ये आज के ज़माने मतलब कि थोड़ा, हाँ, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो काम पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, और उनके पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं बचता, सुबह जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं, और फिर खाना वाना खाकर सो जाते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में वो गीता तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि गीता जो है वो सार है, उसे बार बार पढ़िए आप तो उसी से ज्ञान प्रकट होगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने खुद कहा है, तैसा स्वतनयुक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मम पियान्ति ते, कि वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिसके द्वारा भगवान हम उन तक पहुंच सकते हैं। किसके लिए? तैसा स्वतनयुक्ता नाम भजंतम प्रीति पूर्वकम, जो उनके मन में उनकी निरंतर भक्ति पूर्वक भजन करता रहता है, पूजा करता रहता है, उन्हें समर्पित रहता है, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये मम पियान्ति ते, वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं फिर जिसके द्वारा हम उन तक पहुंच सकें। तो आप सभी शास्त्रों का जो सार है गीता, उसे जरूर पढ़िए आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जीवन के बारे में हम क्या करें, कैसे क्या है, सारी चीज़ें, ये काफ़ी सारे रहस्यमय गूढ़ बातें हैं। ये जो है बिल्कुल जो विज्ञान है, विज्ञान से ही पढ़े हैं, जो विज्ञान सिखाता है वो शास्त्र है। तो आप जरूर पढ़िए, आपको आपके मतलब कि जर्नी के लिए, आपका जो आप सफर जा रहा है अध्यात्मिक ओर पर, उसके लिए बहुत बहुत आभार और शुभ कामनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्मिक उन्नति करें, भगवान के पास पहुँचें, उनसे और करीब आएँ। क्योंकि शास्त्र जब आप पढ़ने तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा मतलब कि बेस क्या है, आधार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों आए हैं, कैसे मुक्ति होगी और कहाँ जाना है, किन से मिलना है, सारी कहानी, सारे बातें, सारी सत्य प्रमाण, हर चीज़ हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। और शास्त्रों में मालाओं के बारे में जैसे कि एक श्लोक आता है लिंग महापुराण में, बिना भस्मे न त्रिपुंडा, बिना रुद्राक्ष मालया, पूजतोपि महादेवा न सत्य तस्य फल प्रदा। यानी कि बिना भस्म के, बिना माला के, बिना त्रिपुंड के भस्म के, बिना रुद्राक्ष की माला के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव उसका फल प्रदान नहीं करते। इसलिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा नहीं कर सकते, कम से कम माला तो पहनी रुद्राक्ष की, भस्म तो लाइए शरीर पर और पूजा करिए, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी है। क्योंकि हम मतलब कि जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो अध्यात्म उन्नति जल्दी होती, नियम पालन करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और भस्म जो है वो मतलब कि बिल्कुल क्या बता सकता हूँ, भस्म का महत्व बहुत है। इसे आप विद्वेश्वर संहिता में पढ़ सकते हैं, रुद्राक्ष का महत्व जो है, जब विद्वेश्वर संहिता उपसंहार होने वाला होता है तो उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसे ही पढ़ सकते हैं। तो भस्म और रुद्राक्ष, अरे रुद्राक्ष जो है महान फल देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करते हैं, और रुद्राक्ष का जब नाम ही लेते हैं तो 10 गाय के दान का फल प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष जब हम स्पर्श करते हैं तो 1000 गाय के दान का फल प्राप्त हो जाता है, इतना बड़ा महत्व है। जब हम रुद्राक्ष की माला पहन के जब किसी अपना देह त्यागता है तो डायरेक्ट रुद्र सायुज प्राप्त करता है, भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। इसकी कहानी जो है देवी भागवत में अच्छे से विस्तृत से लिखी हुई है, 11वां स्कंध है, 5वां या फिर 5वें से 7वें अध्याय में आप पढ़ लेना, ये कहानी आपको मिल जाएगी वहां पे, 11वां स्कंध देवी भागवत में। हर हर महादेव, फिर मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा नई चीजों के लिए और नई टॉपिक और विषय पे। हर हर शिव शंकर महादेव शंभो।